शांति। आप सभी सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी आत्माएं हैं। जैसा अपना सब की टाइटल है, टाइटल के आधार पर वो विशेषताएं हम आप आत्माओं में आती जा रही है। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी रतन। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए दो बात की आवश्यकता पड़ती है। एक है नॉलेज, विधि, और दूसरा है विधि को अमल में लाने के लिए आत्मा में शक्ति। तो शक्ति और युक्ति अर्थात विधि, ये दोनों आत्मा के पास हैं तो विजयी बन सकते है। तीन बातों पर विजय ही वर्तमान में बाप समान बनना और भविष्य में लक्ष्मी नारायण के राज घराने में आना, तीनों है माया जीत, प्रकृति जीत, पुराने संस्कारों पर विजय। इन तीनों पर विजय ही विजय माला के दाने में लाएगा। पहली बात है माया जीत। हम आप जब से ब्राह्मण बने हैं ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम आत्माओं को माया जीत बनना ही है। यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सहज विधि बाबा ने माया जीत बनने की बताई है। माया जीत अर्थात पांच विकारों पर विजय, पांच विकारों को ही माया कहते हैं। तो इन पांच विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि दो है। एक है इन विकारों का रूप बदली करके इनको यूज करो। विकार वही है, शक्ति वही है, सिर्फ रूप बदली कर दो। जैसे काम विकार है, काम विकार बहुत बलवान इस समय माना जा रहा है दुनिया में। काम विकार पर जीत पाने की बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई, शुभ कामना सदा रखो। जैसे काम विकार के प्रति संकल्प चलते हैं, ऐसे सदा शुभ कामना का संकल्प चलाओ कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प मैं आत्मा बाप के गले का हार बनी हूँ, विजयी आत्मा हूँ। ये शुभ कामना स्वयं प्रति रखो, काम विकार का रूप चेंज हो जाएगा। दूसरा है क्रोध। क्रोध को कहा जाता है अग्नि, क्रोध जलाता है। तो जहां क्रोध आता है, संकल्प को चेंज करो, योग अग्नि को प्रज्वलित करो। योग अग्नि ये आपके विकारों को जला देगा, विकर्मों को जला देगा। तो क्रोध अग्नि का रूप चेंज करके योग अग्नि में लाओ। ऐसे लोभ विकार को चेंज करो शुद्ध लोभ में कि मैं विश्व का राज तख्त लेकर ही रहूंगा, विश्व का पूरा राज्य हमारा राज्य होगा, हम सबसे धनवान होंगे, सबसे ज्यादा सुखी होंगे। ऐसे लोभ लाओ, लोभ जरूर रखो, लेकिन ये लोभ लाओ। ऐसे मोह विकार को एक शुद्ध मोह में एक बाबा के साथ इतना अपना मोह जोड़ लो कि एक सेकंड भी बाबा को देखे बिना चैन न पड़े। बस तुम्ही को देखूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्हारे साथ घूमूं, एक के साथ मोह जोड़ लो। अहंकार का रूप बदलकर फर्स्ट क्लास जोश के रूप में ले आओ। कौन सा जोश? कि मैं आत्मा कल्प कल्प विश्व का मालिक बना था, कल्प कल्प विकारों पर विजय प्राप्त किया था, कल्प कल्प की मैं आत्मा विजयी आत्मा हूँ। ऐसे जोश के रूप में इमर्ज करो तो इन पांच विकारों का रूप बदल दो तो ये दुश्मन की जगह आपके दोस्त बन जाएंगे। चढ़ती कला का आधार बन जाएंगे। प्रयोग करके देखो। दूसरी बात है विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि वो है जब आप आत्मा सतयुग में थे, आत्मा शरीर के साथ सतयुग में थी, लेकिन उस समय विकारों पर विजय था, कोई भी विकार नहीं थे। इस समय भी आत्मा शरीर के साथ है, लेकिन आत्मा में विकारों की प्रवेशता है। तो क्या कारण बना जो हम संपूर्ण विकारी थे विकारी बन गए? तो जो कारण बना विकारी बनाने का, उसी कारण का निवारण करो। तो वो कारण बना है कि सतयुग से आत्मा शरीर के साथ रहते रहते आत्मा को शरीर के संग का रंग लगते लगते त्रेता के अंत तक इतना इस देह का रंग लग गया कि आत्मा यही भूल गई कि मैं आत्मा हूं, स्वयं को ये शरीर मान लिया। और जैसे शरीर माना, विकारों की प्रवेशता हुई। तो वर्तमान समय बाबा यही कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो। अगर हम आत्मक स्वरूप में टिके रहें तो विकारों पर विजय स्वतः हो जाएगी, क्योंकि विकार देह भान से हैं। तो देह भान से मुक्त तो विकार से मुक्त। लेकिन हम सदा आत्मक स्वरूप में टिके रहें, उसके लिए आत्मा की जो चार स्टेजेस है, उन चारों स्टेजेस का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं सिर्फ इस स्थिति का अभ्यास करते रहो, कर भी रहे हैं, लेकिन आत्मक स्वरूप में नहीं टिक पाएंगे। जब तक आत्मा की चारों स्टेजेस का अभ्यास नहीं करेंगे, वो चारों स्टेज है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और चौथा अशरीरी। ये चारों शब्द मुरली में सुनते होंगे, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। इन चारों का अभ्यास हमें सारे दिन में करना है। पहला है देही अभिमानी। जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते समय इस स्मृति स्थिति सो स्थिति स्वरूप में रहकर कर्म करें कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ या करा रही हूँ। मैं हूँ आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही जब तक आपका साकार सृष्टि पर पार्ट है आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती और कर्म शरीर के बिना हो नहीं सकता। इसलिए आत्मा को शरीर के साथ रहना ही है लेकिन मालिक बनकर न्यारा बनकर। तो कर्म में मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये अभ्यास बढ़ाओ फिर धीरे धीरे इससे भी ऊंची स्टेज पर चलो। वो है मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। एक है कर रही हूँ, एक है मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा करा रही हूँ। कर रही हूँ अर्थात न्यारा, करा रही हूँ अर्थात उपराम। आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही है, ये है न्यारापन की स्टेज जिसको बाबा कमल का फूल एग्जाम्पल देता है। जैसे और प्रवृत्ति है वैसे आत्मा की प्रवृत्ति ये शरीर है, शरीर के द्वारा हर कर्म करती है। तो कमल का फूल न्यारापन है और उपराम अर्थात गुलाब का फूल, गुलाब का फूल उपराम है। दोनों फूल में अंतर क्या है? गुलाब के फूल की विशेषता क्या है? गुलाब के फूल की विशेषता तीन है जो और किसी फूल में नहीं है। वो तीन विशेषता है, पहला है कि गुलाब का फूल जब कंप्लीट खिल जाता है तो जरा सा ऐसे हिलाओ सारी पंखड़ियां गिर जाती है, पत्ते गिर जाते। किसी भी फूल के पत्ते गिरते नहीं हैं, सूख कर गिरते हैं, लेकिन गुलाब का फूल कंप्लीट खिला और पत्ते गिर जाते। अर्थात आत्मा इस शरीर में कर्म करते हुए एकदम उपराम है, जैसे कुछ है ही नहीं, कोई कर्म इंद्री है ही नहीं। इस शरीर से न्यारे होकर ऑर्डर दे करके इस शरीर से कर्म करा रही है, अलग है। जैसे गिलास में पानी रखा है, एक है मैं आत्मा हाथों के द्वारा पानी पी रही हूँ, ये है न्यारा। और दूसरा है कि आत्मा हाथ को ऑर्डर देती है, पानी उठाकर पिलाओ। मालिक है, इसे अलग है, ये है न्यारापन की स्टेज। तो गुलाब के फूल की एक विशेषता टोटल इन सब से न्यारा है, जैसे कुछ है नहीं उपरां। दूसरी विशेषता है गुलाब के फूल की कि कभी गुलाब के फूल के अंदर भंवरा नहीं बैठता है, वो कीड़े नहीं बैठते, और फूल में जाएगी मधुमक्खी भी जाएगी, भंवरा भी जाएंगे, गुलाब के फूल में नहीं जाते। अर्थात वो आत्मा कर्म करते हुए ना किसी से प्रभावित होगी, ना कोई उस पर प्रभावित होगा। कर्म कर रही है, सबके साथ रह रही है, लेकिन उपराम। तीसरी उसकी विशेषता है शांति। तीसरी विशेषता बता रहे थे कि गुलाब के फूल की जब पंखड़ियां झड़ जाती हैं, सिर्फ बीच में वही फल बचता है, उसका पत्तों से किसी से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ बीच में वो बूर बचा रहता है। ऐसे जो उपराम आत्माएं हैं, वो सब कुछ देखते सुनते रहते करते, लेकिन ऊपर ऊपर की स्टेज ऊपर वाले की याद में रहती है। है यहाँ शरीर, यहाँ काम, यहाँ करती है, लेकिन रहती ऊपर है। तो पहली बात है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हैं तो टोटल आत्मक स्वरूप में टिक जाओ। शरीर है या कोई भी आसपास है, कुछ भार नहीं, बस मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा और ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बाबा। टोटल आत्मक स्वरूप में टिक कर बाप को याद करो आत्म अभिमानी। तीसरा है विदेही, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो। सोमान देहभान को खत्म करेगा। सोमान में रहने से संकल्प बोल कर्म सब स्वतः ही चेंज हो जाएंगे। अगर आपको ये स्मृति सो स्थिति है, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, शिव शक्ति हूँ, कोई भी टाइटल के सोमान में रहो तो स्वतः वैसे ही दृष्टि वृत्ति स्थिति स्वतः रहेगी। जैसे लौकिक में देखो, कोई डॉक्टर है मान लो, तो जब तक घर में रहता है तब तक उसको भान है मैं बाप हूँ, तो उस रीति से सबको देखता है। और जब हॉस्पिटल में जाता है तब उसको रहता है मैं डॉक्टर हूँ, तो सबको उस दृष्टि से देखता है। बदल जाती है वृत्ति। आप लोग भी लौकिक में जब घर में रहते हैं तो उस भाव से परिवार में व्यवहार करते, जब काम धंधा पर जाते ऑफिस में जाते हैं तो अंदर की भावना चेंज रहती है। तो आप जिस सोमान में रहोगे वैसे दृष्टि वृत्ति कृति स्वतः होगी, देहभान खत्म हो जाएगा। चौथा है अशरीरी। जब आप आत्मा परम धाम में हैं तो वहां शरीर नहीं है। आप बीच बीच में इस शरीर से डिटैच होने का, डेड साइलेंस का अभ्यास करो, ये अनुभव करो कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग पड़ा हुआ है। टोटल डिटैच। जैसे कोई मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, शरीर पड़ा है, ऐसे डिटैच का अनुभव करो, जिसको कहते हैं डेड साइलेंस। इन चारों स्टेजेस का समय समय पर अभ्यास करते रहो तो आप आत्मक स्थिति को ला सकते हैं। और आत्मक स्थिति जितनी पक्की होती जाएगी, विकारों पर विजय स्वतः मिलता जाएगा। दूसरा है प्रकृति जीत। प्रकृति जीत बनने की भी दो विधि है। एक विधि है प्रकृति की सेवा करो। तो जितना आप प्रकृति की सेवा करेंगे उतना प्रकृति एनटी रिटर्न में इसी जन्म में आपको आईबेल के समय मदद देगी। इसी जन्म में सतयुग में तो प्रकृति दासी होगी। कौन सी सेवा करो प्रकृति की? प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो। किस प्रकार से सतो प्रधान बनाएंगे? प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि है स्वयं की स्थिति या स्वयं आत्मा को इस प्रकृति से परे कर लो, चाहे सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीरधारी बन जाओ, चाहे मूल वतन में बाबा के पास कंबाइंड हो जाओ। इस प्रकृति से परे की स्थिति में स्थित होकर जो आप संकल्प प्रकृति के प्रति करेंगे, पांचों तत्व पावन होते जा रहे हैं, पांचों तत्व सतो प्रधान होते जा रहे, वो आपकी किरणें पांचों तत्व को पावन बनाएंगी। ये पावन अभी बनाओगे, जितना तत्व को पावन बनाओगे उतना पावन तत्वों पर राज्य करोगे। और संगम युग में ये तत्व आपकी सेवा करेंगे। जो तत्व को दुखी कर रहे हैं, गलत संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकारी संकल्प चला रहे हैं, उनको प्रकृति के द्वारा दुख मिलेगा। और जो पावन बना रहे हैं उनको सुख मिलेगा। जैसे कुछ समय पहले गुजरात में भूकंप आया था, मुख्य केंद्र था भुज, गुजरात में जो सागर के किनारे है, तो सागर के किनारे होने के कारण वहां पानी खारा आता था, मीठा पानी पीने को खरीदना पड़ता था, जमीन से नहीं मिलता था। तो जब भूकंप आया तो उस एरिया में तो सब कुछ, स्कूल हॉस्पिटल सहित सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ अपना बाबा का सेंटर अकेला खड़ा रहा। एक बात ये, दूसरी प्रकृति ने सहयोग क्या दिया कि जो भूकंप आया तो धरती हिली, जो तो उस दिन से बोरिंग में मीठा पानी आना शुरू हो गया। अभी भी मीठा पानी उसमें आ रहा है, वो पानी दूसरों को भी सप्लाई कर रहे। तो देखो एक प्रकृति ने कितने लोगों की जान ले ली। भूकंप आया, भयंकर भूकंप था, और बाबा के बच्चों को मीठा पानी का गिफ्ट दे गई। तो एक प्रकृति की सेवा करो तो प्रकृति आपको अंत में मदद देगी। दूसरी है कि प्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों को धारण करो तो उस तत्व की सेवा स्वतः हो जाएगी। जो प्रकृति के गुण हैं उन गुणों को धारण करो तो प्रकृति की सेवा स्वतः हो जाएगी। पांच तत्व हैं। पहला है आकाश। आकाश तत्व की विशेषता क्या है? आकाश तत्व की विशेषता है आकाश बेहद का है और शून्य है, पोलार है, खाली है। दो विशेषता है, बेहद है और शून्य है। आप अपनी स्थिति सदा बेहद में रखो। बेहद की स्थिति अर्थात मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, जैसे पूरा संसार भगवान का है वैसे मैं आत्मा भी मास्टर भगवान हूं। पूरा संसार ही हमारा है, हमारे भाई बहने हैं, सदा सर्व के लिए कल्याण का सोचो, सर्व के लिए। तो स्थिति बेहद में रहे और शून्य अर्थात बिंदु रूप की स्थिति रहे, बेहद और बिंदु, बिंदु रूप में टिक कर बेहद की स्थिति रखना अर्थात आकाश तत्व की सेवा करना। इससे संगम युग में क्या आपको मिलेगा कि अंत में आकाश की तरफ से जितनी भी आने वाली आपदाएं हैं वो आपदाएं आप पर वार नहीं करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। जितना इस तत्व की सेवा करोगे। दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी में क्या विशेष गुण है? क्या गुण है? दो गुण है पृथ्वी में। एक है दाता है और दूसरा सहनशील है। दाता, आप देखो इस जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है आपको धरती से मिलता है। अनाज है, जल है, जितने खनिज पदार्थ हैं, तेल है, मोबाइल है, जो कुछ भी है आपको धरती से मिल रहा है। लोहा है, तांबा है, जो कुछ भी है धरती से मिल रहा है, दाता है। तो ऐसे धरती के समान दाता बनो, देते जाओ देते जाओ। किसको सुख दो, किसको शांति दो, किसको प्यार दो, किसको शक्ति दो, जिसको जो चाहिए देते जाओ, दाता बनो। दूसरा है धरती की विशेषता सहनशील है। सहनशील तो इतना है कि चाहे आप धरती को गड्ढा खोदो, चाहे उसके ऊपर महल बनाओ, कुछ नहीं बोलेगी। चाहे जंगल लगाओ चाहे बगीचा लगाओ, कुछ भी आप धरती पर करो कुछ नहीं बोलती है। तो ऐसे आप इतने सहनशील बनो जैसे अपना ब्रह्मा बाबा था, मम्मा थी, कितनी बातें सब कुछ आई लेकिन सहनशील बनकर सहन किया। तो जितना अभी सहनशील बनेंगे उतना सतयुग में सहनशाह बनेंगे, राजाओं का राजा बनेंगे। सहनशील सो सहनशाह ऑटोमेटिक बनेगा। तीसरी तत्व की विशेषता है जल। जल की क्या विशेषता है कि जल सबके साथ एडजस्ट हो जाता है और दूसरा बहता रहता है। आप पानी को चम्मच में डालो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, गिलास में डालो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, बड़े बर्तन में डालो उसमें भी एडजस्ट हो जाएगा। तो पानी की विशेषता है एडजस्ट होना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। तो एडजस्ट होने की शक्ति धारण करो। विधि, ये सभी आत्माएं बाबा की संतान है। जैसे आज की मुरली में था वरदान में कि गायन है कि छोटों को प्यार बड़ों को रिगार्ड, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, छोटों को बड़ा समझकर रिगार्ड देना, इसको रिगार्ड देना कहा जाता है। तो भल हमसे छोटे हैं लेकिन उनको भी महानता की दृष्टि से देखना, उस तरह से व्यवहार करना, ये एडजस्ट होने की बहुत सुंदर युक्ति है, विधि है। एडजस्ट तब नहीं हो पाते हैं जब किसी की कमी कमजोरी गलती देखते हैं। ये मेरे से छोटी है, मेरे से बड़ी है, मेरे से ऐसे बात करती है, वो जहां ये सब बातें आती हैं वहां एडजस्ट होना मुश्किल लगता है। अगर सबको बड़ा समझें, सबकी विशेषता को देखें तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो पानी पहली बात एडजस्ट हो जाता है, दूसरा बहता रहता है, अर्थात पावन बनाता रहता, सेवा करता रहता है। तो दूसरी विशेषता है निरंतर सेवा करना। निरंतर सेवा करना और एडजस्ट होना, तो पानी के तत्व की तरफ से कोई भी समस्या आपको प्रभावित नहीं करेगी। चौथा है अग्नि। अग्नि की विशेषता है जलाती है। दूसरी विशेषता है रूप परिवर्तन कर देती है। तो आप भी योग अग्नि से अपने विकर्मों को जलाओ। निरंतर योगी बनकर अपने विकर्मों को जलाओ और ज्वालामुखी योग के द्वारा अपने स्वरूप को संपूर्ण रूप से परिवर्तित करके दिव्य स्वरूप धारी बाप समान स्वरूप धारी बन जाओ। ये है अग्नि तत्व की विशेषता। और पांचवा है वायु। वायु तत्व की विशेषता क्या है? दो है। एक है वायु हल्की होती है इसलिए ऊपर उड़ती है। दूसरी बात, वायु जीवन देती है। कहा ही जाता है कि अगर वायु नहीं तो एक सेकंड भी जीवन नहीं रह सकता है। सद ही है प्राण वायु। आपका जीवन अगर हवा न मिले, सांस अंदर ना जाए, तो कितनी देर जिंदा रहेंगे? थोड़ी देर। तो वायु की विशेषता है जिए दान देना, और दूसरी बात है हल्के होकर ऊपर की स्थिति में रहना। जिए दान देना अर्थात हर आत्मा को बाबा का पैगाम दे करके जो आत्मा विकारों के बस मूर्छित है, परेशान है, उनको बाबा का परिचय देकर उससे मुक्त करके बाबा का बच्चा बनाना, नया जीवन देना, ये जिए दान है। दूसरा, सब बातों को भूल जाओ। कुछ आई नहीं, इतने हल्के बन जाओ कि बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। इतने हल्के बनकर रहो कि इस शरीर का भी बोझ आत्मा पर न पड़े। अगर शरीर का बोझ नहीं तो शरीर भान से बातें आती हैं, तो फिर बातों का भी बोझ नहीं आएगा। तो ना बातों का बोझ ना शरीर भान का बोझ, तो आत्मा हल्की होकर बस मैं और मेरा बाबा, बस उड़ती रहेगी वतन में, बाबा के साथ साथ सैर करती रहेगी। तीसरा है संस्कारों पर विजय। संस्कारों पर विजय प्राप्त करने की भी दो विधि है। एक विधि है कि मैं कौन हूं और किसका बच्चा हूं, इस बात को बार 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 सोचकर स्वरूप में ले आओ तो स्वतः ही संस्कार बदल जाएंगे। जैसे आप लोग जब 7 दिन का कोर्स किया होगा, बहने कराती है तो उसमें एक कहानी बताते हैं छोटी सी, कि एक बार एक राजा अपने परिवार के साथ जंगल में शिकार करने गया। तो जंगल में उसने, राजा ने डेरा डालकर शिकार करने के लिए कुछ अपने साथ सिपाहियों को लेकर आगे गया। शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर राजा चला गया। इधर जो राजा का छोटा सा बच्चा था वो उससे निकलकर कहीं बाहर खेलने लगा। तो इतने में एक भेड़िया आया और उस बच्चे को उठा ले गया, लेकिन भेड़िये ने बच्चे को खाया नहीं। तो वो भेड़िया के साथ रहते रहते राजा का बच्चा भेड़िये जैसे व्यवहार करने लगा। वो यही समझने लगा कि मैं भेड़िया हूं। तो कुछ समय के बाद जब फिर राजा गया शिकार करने, तो देखा भेड़ियों के झुंड में एक मनुष्य दिखाई दिया। तो राजा ने पीछा करके भेड़ियों से उसको मुक्त किया। तो जब लेकर के आए तो उसकी एक्टिविटी तो भेड़ियों जैसी थी, लेकिन राजा का बच्चा बना था तो कुछ उसको निशानी राज की लगाई थी। उस निशानी को देखकर राजा को याद आया कि शायद ये मेरा ही बेटा है। उसको ले आए राजमहल में, एक कमरे में बंद कर दिया क्योंकि हलचल बहुत करता था, और उसके पीछे एक टीचर नियुक्त की गई। टीचर एक ही पाठ पढ़ाता था कि तुम भेड़िया नहीं हो, राजकुमार हो। तुम भेड़िया नहीं हो, राजकुमार हो। यही पाठ दिन रात टीचर उसको पढ़ाने लगा। सुनते 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 उसकी बुद्धि में बैठने लगा, मैं भेड़िया नहीं राजकुमार हूं। और धीरे धीरे जब पूरा बुद्धि में बैठ गया कि मैं भेड़िया नहीं लेकिन राजकुमार हूं, तो पूरा भेड़ियापन का संस्कार बदल गया। ऐसे आप ये सोचो, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, भगवान का बच्चा हूं, होवनहार दिव्य आत्मा हूं। कल्प पहले मैं आत्मा ही देव आत्मा बनी थी, जो जानकी दादी का महामंत्र है, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। तो जितना बार बार मन को ये संकल्प देते रहेंगे, जब ये संकल्प बुद्धि में और बुद्धि के बाद दिल तक जब ये संकल्प उतर जाएगा कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, होवनहार देव आत्मा हूँ, तो नेचुरल वही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और पुराने संस्कार बदल जाएंगे, तब जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।